In our silence, your presence growing strong. In our eyes, the fragrance of your love. You are here. In our eyes, in our songs, overflowing. There are no words to say. Gifts to us each day. All around is your reflection. All around is your creation. All around our gratefulness. Presence growing strong. In our eyes, the fragrance of your love. You are here. In our eyes, in our songs, overflowing. There are no words to say. Your gifts to us each day.
Yes, friends, all around your reflection. ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत. आज के एपिसोड में हम डिस्कोर्स में ओशो पद घुंघरू बांध वॉल्यूम नंबर 4 से सुनेंगे। सुनते हैं माँ तरु की आवाज में बुद्धम शरणम गच्छामि।
दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि नारद ने भक्ति का शास्त्र दिया और मीरा ने भक्ति का गीत। भक्ति के शास्त्र और भक्ति के गीत में क्या फर्क है और क्या भक्ति का शास्त्र संभव है? पहली तो बात, भक्ति का शास्त्र संभव नहीं है, फिर भी शास्त्र बनाना पड़ा है। बहुत सी बातें संभव नहीं है फिर भी करनी पड़ती है। जैसे परमात्मा को नहीं कहा जा सकता फिर भी कहना पड़ता है, कोई कहने का उपाय नहीं, जो भी हम कहेंगे गलत होगा, कहा नहीं कहते ही गलत हो जाएगा। सत्य को कहा ही नहीं जा सकता, सत्य तो मौन में अनुभव होता है, मौन में ही संवादित होता है, लेकिन फिर भी सदा से सत्य को पाए व्यक्तियों ने चेष्टा की है कहने की, क्योंकि अगर वे चुप रह जाएं तब तो तुम समझोगे ही नहीं। चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं तब नहीं समझते, तो चुप रह जाने पर तो कैसे समझोगे। बुद्ध 40 साल बोलते रहे सुबह सांझ सतत, तब नहीं समझे, तो बुद्ध चुपचाप अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे विदा हो जाते, तो तुम कैसे समझते। जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि जाओ चढ़ जाओ मकानों की मुंडेरों पर और चिल्लाओ क्योंकि लोग बहरे हैं। हालांकि जीसस ये भी कहते हैं कि जो है उसे कहा नहीं जा सकता, ये दोनों बातों में विरोधाभास मालूम होगा। नहीं, विरोधाभास नहीं, सत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग बहरे हैं उनको चिल्लाना तो पड़ेगा। सत्य को कहने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के लोगों को जगाने का उपाय है। भक्ति का शास्त्र नहीं हो सकता, लेकिन नारद ने अपूर्व प्रयास किया है, जो नहीं हो सकता उसको करीब करीब करके दिखाया है, करीब करीब ही, हो तो सकते ही नहीं। हम बिल्कुल भक्ति को शास्त्र में तो बांध नहीं सकते, क्योंकि भक्ति भाव है, शब्द नहीं, विचार नहीं, तर्क नहीं। शास्त्र का अर्थ होता है तर्क, विचार, व्यवस्था। भक्ति तो भाव दशा है। आंसुओं का कैसे शास्त्र बनाओ, हृदय में उठती हुई तरंगों को कैसे शब्दों में डालो, प्रेम को कैसे उतारो कागज पर। वो ढाई आखर प्रेम का उतरते ही नहीं, लेकिन फिर भी हम शोरगुल मचा सकते। शोरगुल मचाने से लोगों को सत्य समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। शोरगुल मचाने से ये समझ में आ जाएगा कि जो हमें नहीं मिला है वो किसी को मिला है, उससे प्यास जगेगी। मैं तुमसे रोज बोलता हूं, इसमें कभी भी ये भ्रांति मेरे मन में नहीं है कि मुझे सुन के तुम सत्य को समझ लोगे। ये भ्रांति का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर मैं क्यों बोलता हूं रोज? बोलता इसलिए हूं कि सत्य तो तुम्हें मुझे सुन के समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे सुन के सत्य को समझना है, ये आकांक्षा जग सकती। फिर आकांक्षा के सहारे तुम चलोगे अपने भीतर, तो किसी दिन सत्य भी समझ में आएगा। इसलिए सत्य के संबंध में जो बातें कही जाती हैं अंततः सत्य तक ले जा सकती हैं, मगर बड़े घुमाव से, बड़े परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष सीधे सीधे नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और तुम समझ गए और बात खत्म हो गई। मैंने जो कहा अगर वो तुम समझे तो बात शुरू हुई, खत्म नहीं, यात्रा आरंभ हुई। फिर बहुत होने को है। जिन्होंने भी भक्ति के शास्त्र निर्मित किए उनमें नारद ने बड़ी कुशलता से असंभव को संभव करके दिखाया है, लेकिन बस करीब करीब सत्य के पहुंचते। भनक, आभास, ऐसा ही समझो कि मेरा कोई चित्र उतारे। तो तुम ये तो नहीं कहोगे कि मेरा चित्र मैं हो गया। कोई तुम्हें मेरा चित्र दे दे तो चित्र ही दिया उसने, मुझे तो तुम्हें नहीं दे दिया। तुम चित्र को अपनी जेब में रख लोगे, अपने घर ले जाओगे, संभाल के रख लोगे, लेकिन फिर भी उस चित्र में मैं नहीं हूं। यह तो तुम्हें भी समझ में आता है कि चित्र में मैं कैसे हो सकता हूं, कागज पर पड़े हुए सफेद और काले धब्बों में मैं कैसे हो सकता हूं। जीवन को ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन फिर भी चित्र मेरा है, चित्र किसी और का नहीं, यह भी सच है। और फिर चित्र उतारने में भी कुशलता हो सकती है। 10 लोग चित्र उतारेंगे तो सभी के इतनी कुशलता से नहीं आ जाएंगे। 10 चित्रों में तुम कहोगे ये चित्र सबसे ज्यादा ठीक। क्यों? क्योंकि सत्य के सबसे ज्यादा करीब पहुंचता, यद्यपि फिर भी सत्य नहीं है। ऐसे नारद का सूत्र है, बड़े करीब पहुंचता है यद्यपि स्वयं भक्ति नहीं है। भक्ति के संबंध में बुद्धि जितना सोच विचार कर सकती है उसका सार संक्षिप्त है। फिर मैंने कहा कि नारद ने तो शास्त्र दिया भक्ति का, और गीता ने और मीरा ने गीत दिया। गीत ज्यादा करीब पहुंचता है शास्त्र से ज्यादा करीब, क्योंकि शास्त्र होता है तर्कबद्ध, गीत को कोई तर्कबद्धता नहीं होती, गीत होता है मुक्त। शास्त्र में तुम्हारी बुद्धि को समझाने का उपाय होता है, गीत में तुम्हारे हृदय को सहलाने का। शास्त्र तुम्हारे विचार को प्रभावित करता है, गीत तुम्हारे हृदय को आंदोलित करता है। ये दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि हृदय और बुद्धि अलग अलग है। तुम नारद का शास्त्र समझ के पारंगत हो सकते हो, फिर भी उससे तुम में भक्ति की कोई शुरुआत होगी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है तुम सिर्फ किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि लेने के लिए नारद के सूत्र पढ़ो और उनकी ठीक ठीक सम्यक व्याख्या विश्लेषण करो, उनके लिए ठीक ठीक तर्क संदर्भ जुटाओ और तुम बड़े पंडित हो जाओ, मगर उससे कुछ भाव पैदा नहीं हो जाएगा। मीरा का गीत ज्यादा कारगर हो सकता है, क्योंकि ये तीर सीधा हृदय के लिए है। जब मैंने कहा कि मीरा भक्ति की साकार प्रतिमा है, तो मीरा को समझने के लिए तुम्हें ज्यादा निकट आना पड़ेगा। नारद को समझना हो तो नारद की किताब पर्याप्त, नारद के पास जाने की कोई खास जरूरत नहीं। लेकिन मीरा को समझना हो तो मीरा का गीत काफी नहीं, गायक के पास जाना पड़े। तुमने कभी ये बात ख्याल की, एक ही राग को दो वीणा वादक बजाएं तो भी उसमें भेद होता है। एक ही राग मगर दो वीणा वादक बजाएं तो भेद होता है। एक ही गीत को दो गायक गाएं तो भेद होता है। एक ही गीत है, एक ही राग में बांधा है, एक ही व्यवस्था से गाया गया है, फिर भी दो गायक में भेद हो जाएगा, क्योंकि कंठों का भेद होगा, प्राणों का भेद होगा। तुम देखे तरु सूत्र गाती तो डूब के गाती, जैसे मीरा ने गाए होंगे वैसे गाती है, पीछे खड़े होके अलग होके नहीं गाती, रस विभोर हो जाती तो तुम्हारे हृदय को छूता है। गीत को समझना हो तो गायक के पास आना पड़े, नृत्य को समझना हो तो नर्तक के पास आना पड़े, ध्यान को समझना हो तो ध्यानी के पास आना पड़े, शास्त्र को समझना हो तो शास्त्र के पास जाना पड़ता है, शास्त्रकार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मीरा जीवंत है, मीरा में तो डूबोगे तो समझोगे, मगर मीरा से स्वाद मिल सकता है। नारद से सिद्धांत मिलेगा, मीरा से स्वाद मिल सकता है, और स्वाद ही अंततः निर्णायक है।
शरणम्।
तीसरा प्रश्न, आप रोज नई नई बातें कहे जाते हैं, इससे उलझन बढ़ती, क्या पुराने शास्त्र और उनकी सिखावन पर्याप्त नहीं है? उलझन बढ़ सकती है अगर पुराने शास्त्रों पर बहुत पकड़ हो। अगर सत्य की खोज हो तो जरा भी उलझन न बढ़ेगी, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सभी शास्त्रों का सार है। मेरे शब्द नए हो सकते लेकिन सार वही है, और शब्द हमेशा नए चाहिए, क्योंकि पुराने शब्द पिट जाते जैसे पुराने सिक्के घिस जाते। जितना शब्द बहुत दिन चल चुकता है उतना ही अर्थहीन हो जाता है, पिटा पिटाया हो जाता है। बार बार सुनते सुनते उसकी चोट चली जाती, उसमें जो आघात था जो तुम्हारी हृदय तंत्री को छेड़ देता वो नहीं रह जाता। धर्म को रोज रोज नए शब्द की देह लेनी पड़ती। वेद ने कुछ कहा था, जब कहा था तब न मालूम कितने हृदयों की वीणा उनसे छिड़ गई होगी और न मालूम कितने जीवन में सुवास उठी होगी। फिर पंडित दोहराता रहा, सदियां बीत गई, फिर सब जड़ हो गया। दोहरते पंडित को सुनते, जिन्होंने पहली दफा कहा था वो पंडित नहीं थे, वो प्रज्ञावान पुरुष थे, उन्होंने अनुभव किया था, उन्होंने ईश्वर को देखा था, वे प्रत्यक्ष दर्शी थे, वे गवाह थे, वे साक्षी थे, उन्होंने जाना था, जिया था, अनुभव किया था। उनके शब्दों में एक जीवंतता थी, एक ज्योति थी। मिट्टी का दिया था जरूर, लेकिन दिए में ज्योति भी थी। फिर ज्ञानी ऐसे ज्ञाता गए, उनके शब्द पंडितों के हाथ में पड़ गए, हमेशा ही होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। अंततः शब्द पंडित के हाथ में पड़ ही जाएगा, क्योंकि पंडित शब्द की तलाश में। समझो मुझे, तुम यहां सुन रहे हो, मैं जो कह रहा हूं वो दो तरह के लोगों के हाथ में पड़ेगा। एक तो वे जो मेरी बात को समझेंगे, जिएंगे, डुबकी मार जाएंगे, और दूसरे वे जो मेरे शब्द को पकड़ेंगे, संग्रह करेंगे, शब्द का विश्लेषण करेंगे, व्यवस्था जुटाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इन दोनों का मार्ग अलग हो जाएगा। मेरे साथ जो रस में डूबेंगे वो एक, और मेरे शब्द को पकड़ के जो संग्रह करेंगे वो दो। और आश्चर्य की बात यह कि जो रस में डूबेंगे उनका इतना प्रभाव दुनिया में नहीं होगा। रस में डूबे वाले आदमी को प्रभाव की चिंता भी नहीं होती, वो अपनी मस्ती में जी लेता है और विदा हो जाता है। मगर जो पंडित है, जिसको रस तो कुछ मिला नहीं, जिसने शब्द की ही संपदा इकट्ठी की है, वो शब्द को उछालता फिरेगा, वो सब जगह समझाता फिरेगा, बताता फिरेगा, वो अपने शब्द का फायदा उठाएगा, अपने शब्द से अपने अहंकार को भरेगा। फिर पंडित विवाद करेंगे, कौन ठीक कौन गलत, और वो निर्णायक हो जाएंगे। जिसने सच में भोगा था रस को, वो तो किनारे से दूर हट जाएगा, अपनी पगडंडियों पर विलीन हो जाएगा। राजपथ बनाता है पंडित, फिर वो शब्द का मालिक हो जाता है। जब तक मैं हूं तब तक तो वो मालिक नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही मैं गया वो मालिक हो जाएगा, वो शब्द का धनी है। वो तर्क से सिद्ध कर सकता है, असिद्ध कर सकता है, उसके पास एक कुशलता है। तो वेद जिन्होंने परमात्मा जाना उन्होंने गुनगुनाए, जल्दी ही पंडित के हाथ में पड़ गए। पंडित के हाथ में पड़े कि वो उनको दोहराने लगा, उछालने लगा, जगह जगह फेंकने लगा, एक दूसरे के ऊपर उनका उपयोग करने लगा। पंडित तो शास्त्र का उपयोग शस्त्र की तरह करता है, दूसरों के अहंकार को गिराने, अपने अहंकार को बढ़ाने। तो ब्राह्मणों का एक बड़ा जाल पैदा हुआ, उस जाल में वेद को फांसी लग गई। वेद को किसी ने मारा तो ब्राह्मणों ने मारा, मगर सदा ऐसा होता है। कुछ ऐसा यही हुआ, वेद के साथ ही हुआ ऐसा नहीं, ऐसा सदा होता, सब जगह होता, सदा होगा, सब जगह होगा। ये अनिवार्य दोष है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो फिर बुद्ध और महावीर को नए शब्द खोजने पड़े। फिर बुद्ध और महावीर को वेद को इंकार करना पड़ा, क्योंकि वेद के साथ जो पंडित खड़े थे उनको इंकार करने का और कोई उपाय नहीं था। इस बात को समझना, नहीं तो बुद्ध और महावीर वेद को इंकार करें, बुद्ध और महावीर साक्षी बनते वेद के, गवाह बनते वेद के। वे फिर वे ही पुरुष थे, वैसे ही पुरुष थे जैसे वेद के ऋषि थे, मगर उनको विरोध करना पड़ा वेद का, क्योंकि अब एक ही उपाय था, वेद की आत्मा को पंडितों से छुड़ाने का एक ही उपाय था कि वेद के शब्दों का विरोध किया जाए, क्योंकि उसके तो मालिक तैयार हो गए थे, उन्होंने तो पूंजी बना ली थी। तो जैन और बौद्ध धर्म पैदा हुए जो वेद विरोधी धर्म है, और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें जरा भी वेद विरोध नहीं हो ही नहीं सकता। दो सत्य कभी एक दूसरे के विरोध में नहीं होते, क्योंकि दो सत्य ही नहीं होते, सत्य की दो अभिव्यक्तियां मात्र होती, सत्य तो एक ही है। लेकिन वही फिर महावीर बुद्ध के साथ हो गया, पंडित आ गया। तुम्हें यह जान के हैरानी होगी कि महावीर तो क्षत्रिय थे लेकिन उनके जो 11 गणधर हैं वो सब ब्राह्मण, जिन्होंने महावीर के शब्द को इकट्ठा किया वो सब ब्राह्मण और पंडित। बुद्ध तो क्षत्रिय थे लेकिन बुद्ध के जो बड़े शिष्य हैं, जिन्होंने बुद्ध का शास्त्र निर्मित किया, वो सब ब्राह्मण। और ब्राह्मण से मेरा मतलब कुछ ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले आदमी से नहीं होता, जिसकी भी पकड़ शब्दों पर है वो ब्राह्मण। फिर वही जाल खड़ा हो गया, फिर ब्राह्मणों ने, फिर पंडितों ने बुद्ध महावीर को मार डाला। फिर आए कबीर, मीरा, दादू, नानक, फिर शब्द को मुक्त किया, फिर विरोध करना पड़ा उन्हें, और ऐसा निरंतर होगा। तो मैं जब पुराने शब्दों का कभी विरोध करता हूं तो इसीलिए, ताकि पुराने शब्दों में पड़ी हुई आत्मा को मुक्त कर लो। शब्द का ही विरोध है, आत्मा को बाहर निकाल लेना है। जब तुम समझोगे मेरी बात तो तुम्हें यह बात भी समझ में आएगी, ही निश्चित समझ में आएगी कि जिन्होंने भी जाना है मैं उनकी ही बात कह रहा हूं। लेकिन संदर्भ नया है, भाषा नई है, उपाय नया है, लोग नए, परिस्थिति नई है, काल नया है, सब बदल गया है। जब सब बदल गया तो पुराने शब्द काम के नहीं रह गए, वो संदर्भ के बाहर पड़ जाते। 5000 साल पहले किसी ने कुछ बात कही थी, वो निश्चित ही 5000 साल पुरानी भाषा में आबद्ध है। अब ना तो तुम बैलगाड़ी में चलते, अब तुम जेट हवाई जहाज में चलते हो। तुम्हारी भाषा जेट हवाई जहाज की भाषा है, बैलगाड़ी की भाषा नहीं है। लेकिन तुम्हारा सत्य अभी भी बैलगाड़ी की भाषा में आबद्ध है, उसे मुक्त करना होगा। तुम्हारे सत्य को भी जेट की यात्रा करानी होगी, संदर्भ बदलने होंगे। सत्य को हमेशा नए शब्द का आवरण चाहिए। जैसे पुराने वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते, फिर हम उन्हें बदल देते, नए वस्त्र पहन लेते। तुम सत्य को पुराने ही वस्त्र पहनाए रखोगे सदा सदा? वेद ने संस्कृत के शब्द दिए सत्य को, बुद्ध ने पाली के शब्द दिए, मीरा ने हिंदी के शब्द दिए, भाषा बदल गई, ढंग बदल गया, क्योंकि लोग बदल गए थे। और अगर तुमने जिद की कि तुम पुराने को पकड़ के वैसे ही चलोगे जैसा पुराना था, तो तुम अक्सर पाओगे कि तुम समसामयिक नहीं हो और अक्सर तुम झंझटों में पड़ोगे। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, मैं चाहूंगा इस पर तुम ध्यान करो। एक बड़े मियां जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया बनाया था, आखिर बीमार हुए, मृत्यु रोग में गिरफ्तार हुए। उन्हें कोई फिक्र थी तो बस यही एक कि उनके पांच बेटों की आपस में नहीं बनती थी, गाढ़ी क्या पतली भी नहीं छनती थी, लड़ते ही रहते थे, कभी किसी बात पर इत्तेफाक न होता था। हालांकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर बड़े मियां ने एकता और इत्तेफाक की खूबियां बेटों को दिल में उतारने के लिए एक पुरानी तरकीब ख्याल में लाई, पढ़ी होगी ईसप की किताब में या पंचतंत्र में या लुकमान के वचनों में, पुरानी तरकीब तुमने भी सुनी है पढ़ी है, कि कोई बाप मर रहा था, उसने पांच लकड़ियां एक गट्ठे में बांध दी और अपने बेटों को कहा तोड़ो। उन्होंने बड़ी तोड़ने की कोशिश की लेकिन गट्ठर नहीं टूट सका, पांच लकड़ियां इकट्ठी मजबूत थी। फिर उसने गट्ठर खोल दिया और एक एक लकड़ी बेटों को दे दी और कहा आप तोड़ो। उन्होंने तत्क्षण लकड़ियां तोड़ दी और बाप ने कहा कि देखो पांच इकट्ठे होते हैं तो शक्ति होती, पांच अलग अलग हो जाते हैं तो निर्बल हो जाते। यही मेरा तुमसे आखिरी निवेदन है। ऐसा कहकर बाप मर गया। बड़े मियां को यह कहानी याद आई, सोचा कि उसी कहानी का उपयोग कर लें। बड़े मियां ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा देखो अब मैं कुछ ही दम का मेहमान हूं, सब जाकर एक एक लकड़ी लाओ। एक ने कहा लकड़ी आप लकड़ियों का क्या करेंगे, जमाना बदल गया, पुरानी कहानी में ये बात आती नहीं है कि आप लकड़ियों का क्या करेंगे, वो जमाना और था। बाप ने कहा लकड़ियां लाओ, लड़के लकड़ियां ले आए थे। इधर लड़के ने पूछा कि लकड़ी आप लकड़ियों का क्या करेंगे, दूसरे ने आहिस्ता से कहा बड़े मियां का दिमाग खराब हो रहा है, लकड़ी नहीं शायद ककड़ी कह रहे हैं, ककड़ी खाने को जी चाहता होगा। तीसरे ने कहा नहीं कुछ सर्दी है शायद आग जलाने को लकड़ियां मांग रहे। चौथे ने कहा बाबूजी कोयले लाऊं। पांचवें ने कहा नहीं जी कोयले से क्या होगा, उपले लाता हूं वे ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाप ने करा तो कहा अरे नालायको मैं जो कहता हूं वह करो, क्योंकि उसको तो एक सिद्धांत सिद्ध करना था, कोयले से तो होगा नहीं सिद्ध, उपले से होगा नहीं सिद्ध, ये तो बात ही इन्होंने बदल दी, सब कहानी खराब किए दे रहे हैं। और वो कहानी की बात भी नहीं कह सकता पहले से कि मैं वो पुरानी कहानी नहीं, तो मतलब ही खत्म हो गया, उसको तो छिपा कर रखनी है, वो तो सिद्धांत निकालना है। बाप ने कराते हुए कहा अरे नालायको मैं जो कहता हूं वो करो, कहीं से लकड़ियां लाओ जंगल से। एक बेटे ने कहा यह भी अच्छी रही, जंगल यहां कहां और महकमा जंगलात वाले लकड़ी कहां काटने देते, सजा करवाओगे। दूसरे ने कहा आपने आपे में नहीं है बाबूजी, बक रहे हैं जुनून में क्या क्या कुछ। तीसरे ने कहा भाई लकड़ियां वाली बात अपनी समझ में तो बिल्कुल नहीं आती। चौथे ने कहा बड़े मियां ने उम्र भर में एक ही तो ख्वाहिश की है, उसे पूरा करने में हर्ज भी क्या है, ले भी आओ, दिमाग तो मालूम होता खराब हो गया मगर क्या बिगड़ता है, पांच लकड़ियां ले ही आओ। पांचवें ने कहा अच्छा मैं जाता हूं टाल पर से लकड़ियां ले आता हूं। चुनाचे वह टाल पर गया, टाल वाले से कहा खान साहब जरा पांच लकड़ियां तो देना अच्छी मजबूत हो। टाल वाले ने लकड़ियां दी, हर एक खासी मोटी और मजबूत थी। बाप ने देखा तो उसका दिल बैठ गया क्योंकि लकड़ियां इतनी मजबूत थी कि एक एक भी नहीं तोड़ी जा सकती थी, पांच को तोड़ने का तो सवाल ही क्या था। यह बताना तो मतलब के खिलाफ ही था कि लकड़ियां क्यों मंगवाई गई और उससे क्या नैतिक परिणाम निकालने की आकांक्षा है। आखिर बेटों से कहा ठीक अब तुम जब इन लकड़ियों को ले ही आए तो गट्ठा बांधो, बेटों में फिर खुसर फुसर होने लगी। गट्ठा वह क्यों, अब रस्सी कहां से लाएं? भाई बहुत तंग किया इस बुढ़े ने। आखिर एक ने अपने पाजामे से इजारबंद निकाला और गट्ठा बांधा, जमाना बदल गया। तुम कहां की पुरानी कहानी लिए बैठे हो? बड़े मियां ने कहा अब इस गट्ठे को तोड़ो। बेटों ने कहा लो भाई यह भी अच्छी रही। कैसे तोड़े, कुल्हाड़ा कहां से लाएं? अरे इस बूढ़े के दिमाग को हुआ क्या है, मरना हो तो मर ही जाओ, अब और तो ना सताओ। बाप ने कहा कुल्हाड़े से नहीं, हाथों से तोड़ो, घुटने से तोड़ो। बाप ने देखा हाथ से तो टूटने वाली नहीं, भी कहानी सब गड़बड़ी हुई जा रही। तो उसने कहा हाथ से ना टूटे तो घुटनों से तोड़ो, मगर तोड़ो। बाप का हुक्म से आंखों पर, पहले एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवे ने, लकड़ियों का बाल भी बांका ना हुआ। सबने कहा बाबूजी हमसे नहीं टूटता है लकड़ियों का गट्ठा। बाप ने कहा अच्छा, जब इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जलकर कहा रस्सी कहां है, मेरा इजार बंद है। अगर आपको खुलवाना ही था तो गट्ठा बंधवाया क्यों था? तुम होश में हो कि तुम्हारा होश बिल्कुल खराब हो गया? लाओ भाई कोई पेंसिल दो, मैं इजार बंद अपने पाजामे में वापस डाल लूं। खैर बाप की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करना क्या। कहानी तो पुरानी थी, वो बड़े मतलब की थी, मगर वक्त बदल गया, लोग बदल गए, ढंग बदल गया, सोचने के हिसाब बदल गए। फिर बाप ने कहा अच्छा, जब लड़के ने अपना इजारबंद निकाल लिया तो कहा इनको एक एक लकड़ी को एक एक करके तोड़ो। लकड़ियां मोटी मोटी और मजबूत, बहुत कोशिश की, किसी से नहीं टूटी। आखिर में बड़े भाई की बारी थी, उसने एक लकड़ी पर घुटने का पूरा जोर डाला और तड़ाक की आवाज आई। बाप ने नसीहत करने के लिए आंखें एकदम खोल दी। बाप तो तैयारी में था कि नसीहत करने के लिए एक आठ टूट जाए, क्या देखता है कि बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है, लकड़ी सही सलामत है, उसकी टांग टूट गई। और तुम पूछते हो कि पुराने को मैं नए नए शब्द क्यों दिए जाता हूं? सत्य को नए शब्दों की सदा जरूरत है। सत्य पुराने शब्दों में, पुराने ढांचों में आबद्ध होकर मर जाता है। सत्य को नई उद्भावना चाहिए, नई तरंग चाहिए, नए गीत चाहिए, तो ही सत्य हृदय तक पहुंचता है। और जब ताजा ताजा होता है तभी पहुंचता है, बासा हो जाता है फिर अर्थहीन हो जाता है। सुनी सुनाई बातों को जब तुम बार बार सुनते हो तो सुनने की जरूरत ही नहीं रह जाती। क्या सुनना है, कितनी बार तो तुम सुन चुके हो। पहले भी सुनने से कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? तुम उसी किताब को पढ़ते रहते हो, पाठ करते रहते हो रोज रोज। कल भी किया था, आज भी कर लोगे, परसों भी कर लोगे, ना कल कुछ हुआ था, ना आज कुछ हुआ है, ना परसों कुछ होगा। धीरे धीरे तुम जड़ हो जाओगे। मगर मैं समझता हूं कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। तुम पूछते हो क्या पुराने शास्त्र उनकी सिखावन पर्याप्त नहीं है? सिखावन तो पर्याप्त है, लेकिन उस सिखावन को आज के लिए मौजू बनाना होगा, तभी वो सिखावन होगी, नहीं तो सिखावन नहीं होगी। जैसे आदमी जिंदगी भर जी लेता है, शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उड़ जाती उस शरीर से, फिर उस शरीर को हम दफना देते, जला देते, फिर आत्मा नया गर्भ लेती। ऐसा ही सत्य भी बार बार पुराने शास्त्रों से उड़ जाता है, फिर नया जन्म लेता है, फिर किसी के गर्भ में पैदा होता है। बुद्ध पुरुष सत्य के लिए गर्भ बनते हैं, फिर से जन्म होता सत्य का। तुम्हारी अड़चन सत्य के नए शब्दों के कारण नहीं है, तुम्हारी अड़चन यह है कि तुम पुराने को खूब जकड़े बैठे हो, तुम पुराने से खूब उलझे हो। यद्यपि पुराने से कुछ लाभ भी नहीं हो रहा है, लाभ ही होता होता तो फिर ठीक थी, फिर कोई बात ही नहीं थी, फिर मेरे पास आने की कोई जरूरत भी ना थी। अगर पुराने से लाभ हो रहा है तो मेरे पास आओ भी मत, फिर क्यों उलझन लेनी, पुराने से ही रास्ता बन जाएगा। जाना है परमात्मा तक, रास्ते थोड़ी देखने कि कहां से तुम गए, पहुंचना है उस तक, कैसे पहुंचे तुम फिक्र कर लो। अगर पुराना काम न दे रहा हो तो मेरी बात सुनो, मैं वही कह रहा हूं जो पुराने में है, लेकिन मेरा ढंग अपना, मेरा अंदाजे बयां अपना, और कुछ फर्क नहीं।
Hey, Ramana.
आज के ओशो म्यूजिक में हमने नारायणी को मिलारेपा की क्लाउड वॉचिंग एल्बम से, मा तरु को म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से, ऋषि के म्यूजिकल नंबर को और लास्ट सॉन्ग प्रेम जोशुआ की एल्बम हमसफर से लिया गया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड के एक्सपीरियंस तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
ये जामो सबूदे उठा मेरे साकी, अब आंखों से अपनी पिला मेरे साकी, पिलाता चला जा जो पीना खता है, तो होती रहे ये खता मेरे साकी, मेरी तसनगी फैज तक तेरे पहुंचे, बढ़ा और उसको बढ़ा मेरे साकी, बकाए हयाते खिरस से बचा ले, मुझे बख्स कैफे फना मेरे साकी, यही आरजू खत में सद आरजू है, मुझे ऐसा बेखुद बना मेरे साकी, यही मेरी मंजिल यही मेरा हासिल, तू कदमों में दे दे मुझको जा मेरे साकी। मीरा की भी यही पुकार है, भक्त की यही पुकार है सदा से। ये जामो सबूदे उठा मेरे साकी, भक्त कहता है कि क्या प्यालों में भर भर के मुझे दे रहा है, ऐसी भी क्या कंजूसी। ये जामो सबूदे उठा मेरे साकी, अब आंखों से अपनी पिला मेरे साकी। जो मीरा कहती है, मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, आन बसो नंदलाल मेरे नैनों में मेरी आंखों में, वो तुम्हारी जो बड़ी बड़ी आंखें वो मेरी आंखों में झुकाओ, अब आंखों से अपनी पिला मेरे साकी, पिलाता चला जा जो पीना खता है, और अगर कोई कहता हो कि ये पीना जुर्म है अपराध है पाप है, तो होती रहे ये खता मेरे साकी, भक्त कहता तो फिर मुझे फिक्र नहीं, होती रहे ये खता मेरे साकी, मेरी तसनगी फैज तक तेरे पहुंचे, बढ़ा और उसको बढ़ा मेरे साकी, और मेरी प्यास को ऐसा बढ़ा कि मैं तेरे पूरे सागर को पीने में समर्थ हो सकूं, बकाए हयाते खिरस से बचा ले, ये प्यारा वचन है ख्याल रखना, बकाए हयाते खिरस से बचा ले, मुझे बुद्धि से बचा ले है परमात्मा, मुझे बख्श कैफे फना मेरे साकी, मुझे समर्पित हो सकूं, तुझ में लीन हो सकूं तल्लीन हो सकूं, ऐसा आशीष दे, बकाए हयाते खिरस से बचा ले, मुझे बख्श कैफे फना मेरे साकी, यही आरजू खत में सद आरजू है, मुझे ऐसा बेखुद बना मेरे साकी, भक्त यही मांगता है कि मुझे बेखुद बना दे, मुझसे मेरा पन ले ले, मेरा अहंकार छीन ले, मुझ में मैं भाव न रह जाए, यही मेरी मंजिल यही मेरा हासिल, एक ही मेरी मंजिल है और एक ही मेरी आकांक्षा है, तू कदमों में दे दे मुझको जा मेरे साकी, तेरे कदमों में मुझे जगह मिल जाए, तेरे चरणों में जगह मिल जाए, लेकिन चरणों में जगह मिलना तो बस नाव की ही बात है, अभी जैसे ही चरणों में जगह मिली, जैसे ही दिए इतने करीब आए, ज्योतियां एक हो जाती, जिसने चरण पकड़े परमात्मा के जल्दी ही उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाता, कहीं से पकड़ो उसे, चरण से पकड़ो, मगर पकड़ो उससे जुड़े कि एक हुए, उससे जुड़े तो दो नहीं रह सकते, परमपद भक्त उसकी आकांक्षा भी नहीं करता, वो तो कहता तेरे चरणों में पड़ा रहूं, मगर इन्हीं चरणों में पड़ने के कारण पहुंच जाता परम पद, उपलब्ध हो जाता है, प्रेम मुक्ति है, भक्ति मोक्ष है, और जो प्रेम रहित हैं और निर्गुण की बकवास में लगे हैं और निराकार की बातें कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना, जिन्होंने भी सगुण को भी नहीं जाना वो निर्गुण को क्या खाक जानेंगे? जो अभी आकार को नहीं पहचान सके वो निराकार को कैसे पहचानेंगे? पहले आंखों को आकार को पहचानने के योग बनाओ, फिर निराकार भी आता है, क्योंकि निराकार आकार के पीछे ही छिपा है।
यही तो आरज़ू है खत्म सदा। यही तो आरज़ू है, खत्म सदा आरज़ू है,
यही तो आरज़ू है, खत्म सदा आरज़ू है,
यही तो आरज़ू है,
खत्म सदा आरज़ू है,
यही तो आरज़ू है,
खत्म सदा आरज़ू है,
मुझे तू ऐसा बना बेखुद मेरे साथी,
मुझे तू ऐसा बना बेखुद मेरे साथी,
यही मेरी मंजिल, यही मेरा हासिल,
यही मेरी मंजिल, यही मेरा हासिल,
कदमों में तेरे जहां मेरे साकी,
कदमों में तेरे जहां मेरे साकी,
कदमों में तेरे जहां मेरे साकी,
ये जाओ सो पे उठा मेरे साकी, ये जाओ सो पे उठा मेरे साकी, आंखों से अपनी पिला मेरे साकी, आंखों से अपनी पिला मेरे साकी, पिलाता चला जा जो पीना खता है।